الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو سورۃ القیامہ کی تفسیر ہماری اس کلاس میں چل رہی ہے، پچھلی کلاس میں شروع کری تھی، اور اس کی شروع کی چند آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، اور خلاص تفسیر سے پڑھ کے پھر ہم نے معروف و مسائل پڑھنے شروع کیے تھے. تو معروف و مسائل میں ہم پیج نمبر 633 کے اوپر نفس امارہ لوامہ اور مطمئنہ کی جو ہیڈنگ حضرت نے لگائی ہے، وہاں تک ہم نے پڑھا تھا پہلا پیراگراف، جس میں حضرت نے لکھا تھا کہ حضرات صوفیہ کرام نے اس میں یہ تفصیل کی ہے کہ نفس اپنی جبلت و فطرت کے اعتبار سے امارہ بسو ہوتا ہے، یعنی اوریجنلی جو ہے وہ لفظ جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ امارہ بسو ہوتا ہے، یعنی انسان کو برے کاموں کی طرف بلانے اور اس میں مبتلا کرنے کا داعی ہوتا ہے، مگر ایمان اور عمل صالح اور ریاضت و مجاہدے سے یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی ایمان لے آتا ہے کہ کفر و شرک سے توبہ کر لیتا ہے. ایمان لانے کا مطلب کیا ہو گیا؟ کفر و شرک سے توبہ کر لی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی تصدیق کر لی، پھر اس کے بعد عمل صالح شروع کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی باتیں جو اس یعنی اس کو احکامات ملتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک تو پہلے اس نے ایک امبریلا ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی میں آپ کی ساری باتیں مانوں گا، ٹھیک ہے، لیکن اب باتیں آنی تو بعد میں شروع ہوتی ہیں، احکامات تو بعد میں آنے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس ایگریمنٹ کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن بھی تو کرنی ہوتی ہے نا، تو امپلیمنٹیشن جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت جو ہے عمل صالح اور ریاضت و مجاہدہ، یہ بعد کی بات ہوتی ہے امپلیمنٹیشن، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کو کہتے ہیں تو وہ عمل صالح کہلاتا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرنے کو کہتے ہیں کہ مت کرو یہ کام، یا جو ہے وہ فلانی قربانی دو، اس چیز کو چھوڑ دو، اس چیز کو چھوڑ دو، اب یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس مہینے میں کھانا پینا چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اور اپنی لذات کو جو ہے وہ چھوڑ دو، اور رات کے وقت جو ہے وہ تراوی پڑھنا شروع کر دو، ٹھیک ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ ریاضت و مجاہدہ، ٹھیک ہے، تو جب یہ سارے کے سارے کام کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا نفس امارہ جو ہے نفس لوامہ بن جاتا ہے، کہ برائی اور کوتاہی پر نادم ہونے لگتا ہے، مگر برائی سے بالکلیہ انقطاع اس کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بس ابھی یعنی اگلے سٹیپ پہ پہنچا ہے، اگلے سٹیج میں پہنچا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ابھی شروع ہوتا ہے اس کا معاملہ، نفس لوامہ تھوڑا تھوڑا کر کے بننا شروع ہوتا ہے، لیکن مکمل تو نہیں بنا ہوتا نا ایک دم سے، یہ دنیا تدریجن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام جو ہے وہ تدریجن رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ عالم امر نہیں ہے کہ کن فیکن، ٹھیک ہے، کہ بس جی ایمان لے کر کیا ہے اور بس پورا کا پورا نفس جو ہے وہ مطمئنہ بن گیا، نہیں، اس کے اندر ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو بالکلیہ انقطاع اس کا نہیں ہوتا، آگے عمل صالح میں ترقی اور قرب حق تعالیٰ کے حصول میں کوشش کرتے کرتے جب اس کا یہ حال ہو جائے کہ شریعت اس کی طبیعت بن جائے اور خلاف شرع کام سے اس کو طبیعی نفرت بھی ہونے لگے، تو اس نفس کا لقب مطمئنہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ اب جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے پورا کا پورا یہ یعنی ٹھیک ہو گیا اور پھر مطمئنہ بن گیا. مطمئنہ کی تعریف کیا بنتی ہے؟ کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہیں، اور ظاہر ہے جو شریعت کے اندر جو پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے لیے بھی پسندیدہ ہو جاتی ہیں. اچھا اب وہ جو سوال کیا تھا آپ لوگوں سے پچھلی کلاس کے آخر میں کہ اوپر جو نفس لوامہ کی تفصیل لکھی ہے حضرت نے, تو اس میں جو دو لائنز ہیں نا, سب سے پہلی لائن تو 633 کے اوپر کہ مومن کامل اپنے ہر عمل خیر و شر اور حسنات و سیئات میں اپنے آپ کو ہمیشہ ملامت ہی کرتا رہتا ہے. اچھا کام کرتا ہے پھر بھی ملامت کرتا ہے, برا کام کرتا ہے تو ملامت کرنا سمجھ میں بھی آتا ہے. اور پھر اسی بات کو ریپیٹ کیا تھا پانچویں لائن میں, ٹھیک ہے, جس میں فرمایا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نفس لوامہ کی تفسیر نفس مومنہ سے کی ہے. یعنی مومن کا نفس لوامہ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مومن کی تعریف ہی کیا ہوئی کہ وہ نفس رکھنے والا بندہ کہ جو کہ ملامت کرتا ہو اپنے آپ کو, وہی مومن ہوتا ہے. تو فرمایا ہے کہ واللہ قسم کھا کے اللہ کی کہہ رہے ہیں, مومن تو ہمیشہ ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت ہی کرتا ہے, ہر حال میں ملامت کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کے اوپر آپ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ تو بڑی ڈپریشن قسم کی سچویشن ہے نا, بڑی مایوس کن قسم کی, نو ہوپ ہے نا, کوئی امید کی کرن ہی نظر نہیں آتی, بس یہ یعنی اپنے آپ کو ملامت کرتے رہو, جس کو ہم کہتے ہیں نا کراچی والے خاص طور پر کوسنا, اپنے آپ کو کوستے رہو ہر وقت. تو بھائی کوستے رہنے سے تو پھر جو ہے وہ طبیعت خراب ہوتی ہے نا, دوسرے کو کوستے ہیں تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے, اپنے آپ کو کوستے ہیں تو پھر اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے. تو اس سچویشن کا تو مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہے تو پھر تو وہ تو ہر وقت ڈپریسڈ ہی رہے گا, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ پھر مومن یہ مایوسی کا شکار کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ ڈپریشن جو ہوتے ہیں ہے نا اس کا تعلق مایوسی کے ساتھ ہوتا ہے, مایوسی از اکول ٹو ڈپریشن یا جو بھی ہے کوئی بھی آپ ایکویشن بنا لیں اس کی. تو مومن پھر مایوس کیوں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا بھائی. اگر مایوس ہو جائے گا تو مایوسی تو کفر ہے نا, تو وہ کفر کا شکار کیوں نہیں ہوتا. تو یہ سوال کیا تھا, تو اس کا جواب جو ہے وہ کچھ لوگوں نے تو لکھ کے بھیجا, اور شاید کچھ لوگ انتظار کر رہے تھے کلاس شروع ہوگی تو پھر اس میں جواب دیں گے. تو اگر کوئی اور اٹیمپٹ کرنا چاہے اس کا جواب تو ابھی آپ کے پاس موقع ہے کہ مومن مایوسی کا شکار کیوں نہیں ہوتا, اتنا کوس کر کے اپنے آپ کو اپنے اعمال سے مایوس ہوتا ہے, اللہ کی رحمت سے نہیں ہوتا. اچھا, مومن ہر حال میں اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے نیک کام کر کے بھی, اس لیے یہ بات سن کر وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. یہ تو مطلب ری ورڈ کر کے آپ نے وہی بات لکھ دی ہے, اپنے آپ پر ملامت کرنے سے نفس کمزور ہوتا ہے اور قلبی اور روحانی ترقی ہوتی ہے. اچھا, کیا نیگیٹو انورسلی پروپورشنل ہوتا ہے, سو ڈپریشن میں نہیں جاتا. زبردست, یہ تو ماشاء اللہ اچھا جواب دیا آپ نے, ٹھیک ہے. اور امید ہے کہ وہ رمضان المبارک میں جو بات ہوئی تھی اس کے بارے میں تو اس کو آپ نے غور سے سنا, اچھی بات ہے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. یعنی جب اس کو نفس کو کم کوس رہے ہوتے ہیں, اس کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ذرا میتھمیٹیکل قسم کا جواب دیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس سے جو ہے وہ نفس کمزور ہو رہا ہوتا ہے اور آٹومیٹیکلی اس کا جو ریزلٹ نکلتا ہے وہ روح کی مضبوطی میں ہوتی میں نکلتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب روح مضبوط ہوگی تو مایوسی کیسی, ٹھیک ہے, مایوسی تو روح کی کمزوری کی علامت ہے. تو یہاں پر تو روح مضبوط ہو رہی ہے پھر مایوسی نہیں, تو یہ جو ہے نا وہ ایک اچھا میتھمیٹیکل آنسر ہے انورس پروپورشنل کے میتھڈ کو استعمال کر کے انہوں نے ایکسپلین کیا. ویری گڈ. نفس لوامہ کی وجہ سے, نفس لوامہ کی وجہ سے کیا مطلب, مومن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے. اچھا, تو وہ مایوس نہیں ہوتا. اچھا چلیں, تو اور بھی لوگوں نے جواب دیے تھے, اور ملامت نفس کے باوجود مومن رحمت الہی سے مایوس نہیں ہوتا. مردوں میں بھی یہ سوال بھیجا تھا, تو مردوں میں سے تو ایک ہی بھائی تھے جنہوں نے جواب دینے کی زحمت گوارا کری, ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا سا جواب لکھا, اچھے الفاظ بہت, اور خواتین میں بھی چند دیکھ رہے ہیں جواب لکھا تھا, لیکن سب نے جو جواب لکھا, ٹھیک ہے نا, फर्स्ट अटेम्प्ट सिवाय एक के जिन्होंने अभी जवाब लिखा है. फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो सबकी क्या थी, साजिद ने सबको एक एक ही जवाब दिया, ठीक है, कि ये किताबी जवाब. क्या जवाब दिया? किताबी जवाब. और वो जवाब था क्या? सबका यही जवाब था, ठीक है, आज से पहले जिन लोगों ने जवाब दिया सबका यही जवाब था कि मोमिन जो है वो बैनल रजा वल खौफ, है ना, वो हदीस मुबारक का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मोमिन जो है वो उम्मीद और खौफ के दरमियान ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है. तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जी मलामत करना, तो मलामत जो है वो एक तरह से खौफ वाली वजह से मलामत करता है वो, ठीक है, कि उसको खौफ होता है कि उसका अमल जो है कबूल नहीं होगा, उसका अमल इस काबिल नहीं था और गुनाह कर बैठा है तो उसके ऊपर सजा मिलेगी उसको, ठीक है, नेकी कर बैठा है, नेकी कर ली है उसने लेकिन उस काबिल उस यानी लेवल की नेकी नहीं करी जैसी कि उसको करनी चाहिए थी. तो ये सब खौफ की ही कॉन्सिक्वेंसेज है ना, ठीक है. लेकिन साथ साथ जो है वो उम्मीद भी उसको लगी होती है, जैसे कि आप लोगों ने भी लिखा कि जिसकी नज़र जो अल्लाह की रहमत पर होती है और ऑल ऑफ दिस, ठीक है. तो ये जितने जवाब थे ना, इनमें से किसी जवाब को ये आजिज जो है वो गलत कहने की तो जुर्रत नहीं कर सकता, ठीक है, किसी को नहीं लिखा गलत जवाब है, सही है, क्योंकि ये जवाब सही है, ऑफ कोर्स सही है, ठीक है ना. और ज़ाहिर हदीस ही की बेसिस से ये जवाब आए हैं, लेकिन जो लिखा है साजिज ने वो क्या लिखा सबको, कि किताबी जवाब है, थियोरेटिकल आंसर है, ठीक है. तो अब ये बात थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये थियोरेटिकल आंसर क्या चीज़ होती है, राइट, और दूसरा कौन सा जवाब होता है थियोरेटिकल आंसर के अलावा, कौन सा वाला जवाब होता है, अगर आप में से किसी से पूछें जिन्होंने जिनको मैंने ऑलरेडी बताया नहीं है, जवाब नहीं दिया ऑलरेडी, तो अगर उनसे यानी वो खामोश रहे हैं, दूसरे बताएं कि एक होता है थियोरेटिकल आंसर किताबी जवाब, राइट, दूसरा कौन सा वाला जवाब होता है, प्रैक्टिकल होगा जाहिर है, थ्योरेटिक थ्योरी के बाद जो है प्रैक्टिकल ही रह जाता है, ठीक है. लेकिन हमारे दीन के कॉन्टेक्स्ट में एक किताबी जवाब होता है और दूसरे के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, प्रैक्टिकल का लफ्ज दीनी टर्मिनोलॉजी में तो नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो दीनी टर्मिनोलॉजी में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है प्रैक्टिकल के लिए, कोई अमली जवाब नहीं, अमली जवाब नहीं इस्तेमाल किया जाता, ये टर्म इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है. तो या ये कि चले कहें कि थ्योरेटिकल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट, तो इसके बदले में दूसरी नॉलेज कौन सी होती है, राइट, यानी किताबी इल्म, तो किताबी इल्म के बदले में दूसरा इल्म कौन सा होता है, अब जरा आसान होगा इंशाल्लाह जवाब देना, दूसरा कौन सा इल्म होता है, तजुर्बे वाला इल्म, हाँ, लेकिन दीनी कॉन्टेक्स्ट में तजुर्बाती इल्म का लफ्ज इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता, तजुर्बा जो है ना वो दीन जो है वो तजुर्बों से भी थोड़ी आता है, क्या ख्याल है आपका, है तजुर्बे करते हैं कि अच्छा ऐसे करने से जो है वो फ़ायदा होगा, ऐसे करने से नुकसान होगा, तो तजुर्बा करके बंदा सीखता है, हैं, फिर उसके बाद जो है वो गलत काम नहीं करता, फिर उसके बाद सही काम करता है, ये है दीन हमारा, तजुर्बाती दीन है हमारा, तो हमारा दीन फिर क्या है, किताबी दीन अगर नहीं है, तजुर्बाती दीन अगर नहीं है, तो फिर कौन सा वाला दीन है भैया, जी सोहबती दीन है ये, तो इतना लंबा सा पढ़ने में टाइम लग जाएगा, सोहबती दीन है ये, ठीक है. अच्छा उन्होंने शायद लिखा है तो पढ़ लेते हैं कि मायूसी और डिप्रेशन इज़ ओनली नेगेटिव और अंधेरे का नाम है, जबकि नफ्स को मलामत करना कॉम्बिनेशन ऑफ मलामत टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी के साथ होता है, जबकि एवेल्यूएशन करने वाली ज़ात अल्लाह पाक से इस मलामत पर बहुत ज़्यादा मिलने की उम्मीद नहीं, यकीन होता है और मामलात भी तौबा होती है, अच्छा मलामत भी तौबा होती है, सही, तो बिल्कुल ये जवाब भी सही है, ऑफ़ कोर्स बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन किताबी, ठीक है, इलामी जवाब नहीं, इलामी जवाब चलता नहीं है वैसे, तो हम रिजालुल्लाह से लेते हैं, अच्छा जो हम रिजालुल्लाह से लेते हैं, जी, तो जो किताबी इल्म है ना इसके बरअक्स दूसरा इल्म कौन सा होता है, उसको कहते हैं सोहबती इल्म, सोहबती इल्म, क्या इस बात में कोई दो राय हो सकती है कि हमारा दीन सुहबती दीन है, राइट? ये किताबी दीन नहीं है, ये सुहबती दीन है। अगरचे कि किताबुल्लाह इसके अंदर बुनियाद की हैसियत रखती है, लेकिन किताबुल्लाह कैसे मिली, किताबुल्लाह कैसे मिली? किताबी शक्ल में मिली? नहीं, किताबी शक्ल में नहीं मिली, राइट? वो तो इंसान की सोहबत के वास्ते से मिली, नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से मिली ना। तो नबी अलैहिस्सलाम की जिन्होंने सोहबत इख्तियार करी, ठीक है ना, बात मानने के साथ सोहबत इख्तियार करी, उन यहूदियों और मुनाफिकों की तरह सोहबत इख्तियार नहीं करी, बल्कि अताअत के साथ, राइट, सबमिशन के साथ सोहबत इख्तियार करी, उनको किताबुल्लाह मिली ना, उनको किताबुल्लाह से फायदा हुआ ना, ठीक है। तो ये किताबुल्लाह भी सोहबत के जरिए से मिली है, ये किसी और चैनल से नहीं मिली है। तो हमारा दीन जो है ना, ये सोहबती दीन है, ये थ्योरेटिकल दीन नहीं नहीं है, ये किताबी दीन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझाने के लिए एक मिसाल लेते हैं कि यानी आप लोगों का जो जवाब है, जो कि बहुत ही अच्छा किताबी जवाब है, राइट, तो ये जो है वो यानी इसको जो है वो हमने इस तरह से क्यों ट्रीट किया है कि जी नहीं है जी, गोया कि दिस इज नॉट द बेस्ट आंसर, व्हाई इज नॉट द बेस्ट आंसर, ठीक है। तो उसकी वजह ये है कि आप लोग जो है ना, देखें ये जो क्लास है ना, ये क्लास जो है ना, ये दीन एसेंशियल्स फॉर वुमेन की क्लास नहीं है, है ना, ये दीन एसेंशियल्स फॉर वुमेन की क्लास नहीं है, ठीक है। ये कौन सी वाली क्लास है? ये क्लास, इसका नाम क्या है इस क्लास का? आलिमात सालिकात, ठीक है ना। ये वो लोग हैं कि जो के इल्म इल्म दीन हासिल कर रहे हैं तफसीली, ठीक है ना, हाई लेवल नहीं, बल्कि तफसीली इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। किस लिए हासिल करते हैं? अल्लाह की रजा के लिए जाहिर हासिल करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मकसद क्या होता है दुनियावी एतबार से, या इस दुनिया की कॉन्टेक्स्ट में, दीन के इल्म की हिफाजत करना, ये है आलम बनने का मकसद, दीनी उलूम की हिफाजत करना। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है ये। और जो सालिकात हैं, ये सालिकात क्या कर रही हैं? सालिकात जो हैं वो अपना इलाज करवा रही हैं, ठीक है ना, अपनी इस्लाह करवा रही हैं, ठीक है। और साथ साथ जो है ना, उनकी जो इस्लाह हो रही है, वो इस्लाह भी जो है वो इस नीयत से इस्लाह करने वाले, वो इस नीयत से उनकी इस्लाह कर रहे हैं कि ये आगे जा करके इस्लाह करेंगे, ठीक है, लोगों की इस्लाह में उनकी मदद करेंगे। आलिमात को भी इसी नीयत से पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ ये नहीं कि वो अपने सीने में जो है वो इल्म को महफूज करके बैठ बैठ जाएंगे उसके बाद, नहीं, बल्कि इस इल्म को आगे भी ट्रांसफर करेंगे, अगली नस्लों को भी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये नॉर्मल क्लास नहीं है, ठीक है ना, ये स्पेशल क्लास है। तो इस स्पेशल क्लास के अंदर जो है ना, ये किताबी इल्म सफिशेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये जो क्लास है, ये ऐसे है कि गोया के जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, आप में से कुछ डॉक्टर्स भी हैं, एमबीबीएस करते हैं, ठीक है। तो एमबीबीएस करने के अंदर क्या होता है, शुरू में किताबें खाली पढ़ाते हैं, लेकिन थर्ड ईयर से जो है ना, उसके अंदर प्रैक्टिकल शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वो बंदा लेटा हुआ होता है मुर्दा मोड़ के अंदर, और वहां पर जो है ना, बॉडी की फिर काटपीट शुरू हो जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकल वहां पे करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने जो है ना, वो सिर्फ जो है वो नहीं सीखना कि जी घरेलू टोटके नहीं सीखना है, ठीक है ना, सिर्फ फर्स्ट एड करना नहीं सीखना है, इन्होंने तो डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टरी इल्म को सीखना है, उसके बाद फिर लोगों को सिखाना है, पढ़ाना भी है, यही डॉक्टर्स जो है वो प्रोफेसर लगते हैं आगे जा करके, और इन्होंने दूसरों का इलाज भी करना है, ठीक है। तो अब इनको इल्म कैसे दिया जाता है? इनको सिर्फ किताबी इल्म नहीं दिया जाता, बल्कि इनको सोहबती इल्म दिया जाता है। देखे हैं ना कभी हॉस्पिटल्स के अंदर, ये जो राउंड के ऊपर जो डॉक्टर साहब आते हैं, तो वो अकेले आते हैं? नहीं, उनके साथ जो है ना, वो एक बटालियन लगी हुई होती है उनके स्टूडेंट्स की, राइट, जो के उनके साथ जो है वो रेजिडेंसी कर रहे होते हैं, हाउस जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डॉक्टरी वाला काम है, इन अदर वर्ड्स, ये जो डॉक्टरी वाला काम है, ये सिर्फ थ्योरी से नहीं होता, बल्कि इसके लिए सोहबत की जरूरत पड़ती है, सोहबत की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जबकि एक आम आदमी के लिए थ्योरी काफी होती है, ठीक है, वो बस थ्योरी से जो है वो इल्म हासिल कर लेता है, अब थोड़ा बहुत जो है वो इधर उधर से कुछ कुछ पिक विक कर करके ना, थोड़ा बहुत अपने अमल में लेकर के आ जाता है चीजों को, लेकिन उसने हिफाजत नहीं करनी होती है, उसने जो है वो दूसरों का इलाज नहीं करना होता है, ठीक है, तो इस वजह से ना ये दीन एसेंशियल सी क्लास अगर होती तो थ्योरेटिकल जवाब जो है वो चल जाता, लेकिन यहाँ पर तो सोहबती जवाब चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ जो है माशाल्लाह कितने साल हो गए, 10 साल तो हो गए, ठीक है, वो तफसीर भी पढ़ रहे हैं, हदीस भी पढ़ रहे हैं और बयान भी सुन रहे हैं और माशाल्लाह डांटे भी खा रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो अब इतनी डांटे खा खा करके, इतना किताबें पढ़ पढ़ करके, इतनी जो है वो बयानात सुन सुन करके और मुराकबे भी माशाल्लाह कुछ लोगों ने खूब किए हुए हैं, तो अभी भी वो थ्योरेटिकल जवाब दें तो फिर अफसोस होता है ना उसके ऊपर फिर, राइट। आपने यानी सोबत इल्म तो आपने कुछ हासिल ही नहीं किया, आप तो इसका मतलब है, ठीक है। तो देखें जो डॉक्टर होता है ना वो बीमारी को किस नजर से देखता है, और एक आम इंसान बीमारी को किस नजर से देखता है, एक आम मुसलमान, ठीक है, जैसे एक आम मुसलमान है, ठीक है, वो बीमारी को कैसे देखता है, भाई अल्लाह की रजा है ना, अल्लाह की मर्जी से इसको बीमारी हो गई, अल्लाह ताला ने जो है वो की मर्जी से इसको बीमारी हो गई, अल्लाह ताला की मर्जी से इसको शिफा हासिल हो जाएगी, ठीक है, बस जो है वो डॉक्टर साहब जो है ना वो थोड़ा दवाई शवाएं इनको दे देंगे, लेकिन शिफा तो इसको अल्लाह ताला ने देनी है, तो क्या वो गलत बात कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, ठीक है ना, डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत दवाई शवाएं देते रहेंगे लेकिन असल में शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है ना, ठीक है। तो ये किसकी नजर है, ये एक आम इंसान की नजर है, एक आम मुसलमान की नजर है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब क्या ख्याल है आपका, डॉक्टर साहब भी अगर यही बात करें तो काफी होगा उनके लिए कि अल्लाह ताला ने इसको शिफा देनी है, मैं तो बस ऐसे ही जो है ना वो कुछ ऐसे ही कुछ लिख देता हूँ उसके लिए बस, ठीक है, और शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है, तो क्या ख्याल है डॉक्टर साहब चल जाएंगे इस तरीके से, नहीं डॉक्टर साहब इस तरह नहीं चल सकते, डॉक्टर साहब को तो गहराई में उतरना पड़ेगा, है ना, डॉक्टर साहब को तो डायग्नोसिस करनी पड़ेगी, डॉक्टर साहब को तो ये चेक करना पड़ेगा कि इसको बीमारी हो ही कैसे, राइट, क्या कॉजेज हैं इसकी बीमारी के, क्या ये बैक्टीरियल है, क्या ये वायरल है, और अगर वायरल है तो क्या ये COVID-19 वाला वायरल है या ये कोई और किस्म का वायरल है ना, डॉक्टर साहब की नजर तो गहराई में जानी है ना, हालांकि डॉक्टर साहब भी मोमिन है, ठीक है ना, मोमिन डॉक्टर साहब की बात करें, उनको भी पता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन उनके लिए ये बात कह देना काफी नहीं है कि जी अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला इसको शिफा दे देंगे, उनको तो असबाब में जाना पड़ेगा ना, बात समझ में आ रही है, डॉक्टर साहब को तो असबाब के लेवल पे उतरना पड़ेगा, उनको तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बीमारी किस वजह से हुई है, ठीक है ना, ये सारा काम है डॉक्टर साहब का, ठीक है, कुछ एम आई मेकिंग एनी सेंस, डॉक्टर साहब पता है ना डॉक्टर साहब का ये काम है, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो आप लोगों से ये अवामुन नास वाला जवाब एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों से जो है वो डॉक्टर साहब वाला जवाब चाहिए था, ठीक है, तो डॉक्टर साहब वाला जवाब जो होता है ना वो सोहबती जवाब होता है, क्योंकि सोहबत के अंदर जब जाकर के इंसान चीज को देखता है ना तो उसको फिर गहराई में उतरना होता है, ठीक है, तो कॉजेज उसको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जो है वो उसको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, ये सारा काम डॉक्टर साहब ने करना होता है, ठीक है, तवक्कुल नहीं कर सकते डॉक्टर साहब यहाँ पर, ये कुछ नहीं करेंगे और अल्लाह तवक्कुल, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से ना ये जो सवाल था इस सवाल का जवाब क्या था, ठीक है, जो कि बाद में माशाल्लाह लोगों ने ठीक करके वो जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वो जवाब ये था यूसी ये खुद ब खुद नहीं हो जाती, ठीक है ना, दुनिया में कोई चीज खुद ब खुद नहीं होती है, हर फेल का कोई फाइल होता है, ठीक है ना, डॉक्टर साहब को ये बात पता है ना, आप लोगों को जो ग्रामर पढ़ चुके हैं, जो कि वो को भी अच्छा खासा जो है वो सुन चुके हैं, तो उनको ये बात पता होनी चाहिए कि हर फेल का कोई फाइल होता है, ठीक है, तो जो मायूसी की जो कैफियत पैदा हो रही है इस फेल का कौन फाइल होता है, शैतान होता, ये फाइल हमारी निगाहों से ओझल नहीं होना चाहिए, ये फाइल नहीं हमारी निगाहों से ओझल होना चाहिए कि शैतान मायूसी पैदा करता है, ठीक है ना, एक एक्टिव चीज है, एक एक्टिव शख्स है, ठीक है, जिन्नों में से है, वो मायूसी पैदा करता है, और इस मायूसी का काउंटर आपने असबाब से इलाज करना होता है, ठीक है ना, ये शैतान ये भी एक सबब है, ये एक पर्सनैलिटी है, ये मायूसी आपके अंदर पैदा करती है, और इस मायूसी का काउंटर जो है वो भी सबब से ही करना होता है। ठीक है, वो सबब क्या है? वो सबब जो है वो शेख कहलाता है। ठीक है, जो शैतान का को अपोज करता है अपनी दवाओं के जरिए से, ठीक है, अपनी तदाबीर के जरिए से, वो जो है ना शेख कहलाता है। ठीक है, और जो शेख साहब होते हैं तो शेख साहब फिर क्या करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, वो शैतान साहब जो है वो शेख साहब यानी शैतान साहब जो है वो मायूसी क्रिएट कर रहे हैं वसवसे डाल डाल करके, और ऐसी जो है वो यानी उसको आइडियाज दे दे करके। ठीक है, तो शेख साहब जो हैं वो क्या फिर किस तरीके से इसको काउंटर करेंगे? या तो वो मरीज साहब जो हैं जो कि मायूसी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो या तो डायरेक्टली शेख साहब से रابطہ करेंगे और उनको अपनी कैफियत बताएंगे, तो शेख साहब जो हैं उनको डायरेक्टली जवाब देंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि डायरेक्टली रابطہ करना मुश्किल होता है, जैसे ख्वातीन के लिए। ठीक है, तो उसका क्या तरीका होता है? उसका तरीका ये होता है कि शेख साहब जो जनरली ये सारी बातें कर रहे हैं, मलफूजात में कर रहे हैं, बयानात में कर रहे हैं, मजालिस में कर रहे हैं, राइट, तो जो मरीज होता है उसका तो खुसूसी ताल्लुक होता है ना शेख साहब के साथ, क्योंकि शेख साहब उसके पर्सनल डॉक्टर हैं, तो वो उनकी हर हर बात को जो है वो बहुत गौर से सुन रहा होता है। ठीक है ना, तो उसकी बातों के अंदर इसको फिर अपनी मायूसी का इलाज भी मिल रहा होता है, राइट। उस शेख की बातों में, उस शेख की जो जो, जो एडवाइजेज होती हैं उसके अंदर इसको अपनी मायूसी का सद्देबाब भी मिल रहा होता है, इलाज भी मिल रहा होता है। तो इस तरीके से मुस्तकिल की मलामत वाला अमल उसको मायूसी की तरफ नहीं बढ़ने देता, यानी मुस्तकिल की मलामत के बावजूद वो मायूसी में नहीं गिर पड़ता। ठीक है ना, ये है तफसील इसकी। ठीक है ना, और ये तफसील कहाँ से आती है? ये सोहबती इल्म से आती है। ठीक है ना, ये खाली किताबी इल्म से ये तफसील नहीं आती है। बाकी आप लोगों ने क्या लिखा है कि जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत होगी वो अल्लाह ताला की अजमत से वाकिफ होगा तो उसे अपनी हर इबादत कम लगेगी, इसलिए उसे हर वक्त अपनी इबादत कम लगेगी। बिल्कुल माशाल्लाह 100% सही जवाब है, लेकिन किताबी जवाब है। आगे यानी इस एतबार से रूहानी आंसर ये है कि एक तरफ शैतान मायूस करता है तो मोमिन की दूसरी तरफ किसी बड़े का हाथ होता है जो मायूसी में डूबने नहीं देता। जी बिल्कुल, ये यही इसका जवाब है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक बात शर्त है कि वो जो मरीज साहब जो है ना वो मायूसी के मरीज हों। ठीक है, तो मायूसी के मरीज होंगे तो फिर जो शेख साहब होंगे वो असबाब इख्तियार करके वो उनको मायूसी से निकालेंगे। ठीक है, लेकिन आजकल यूजुअली ऐसा होता नहीं है, मायूसी के मरीज कम होते हैं, जैसे आप लोगों को पहले भी हम समझाते रहे हैं। आजकल जो है ना वो दूसरी एक्सट्रीम के मरीज ज़्यादा होते हैं, खुद पसंदी और तकब्बुर और उजोब और इन सब के मरीज ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से ना शेख साहब को जो है वो मायूसी से निकालना आजकल शेख साहब के लिए चैलेंज ज़्यादा बड़ा नहीं है। ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो है ना वो खुद पसंदी से निकालने का चैलेंज है, इस वजह से ज़रा डांटे ज़्यादा खिलानी पड़ती हैं। ठीक है, तो बहरहाल लेकिन दिस इज़ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड था आलिमात सालिकात से। ठीक है, दीन एसेंशियल वालों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर मजीद? अच्छा, तो आगे पढ़ लेते हैं, आगे इंशाल्लाह आसान मामला है, क्योंकि ये जो शुरू का जो एरिया था ना, ये ला अक्सुमु बियौमिल क़ियामा वला अक्सुमु बिन्नफ़्सिल लवाम, ये तो गाढ़ी तसव्वुफ़ थी। ठीक है, और गाढ़ी तसव्वुफ़ के अंदर तो फिर ये सारी तफसीलात में जाना पड़ेगा ना। आगे फिर जो है वो क़यामत वगैरह के अहवाल बयान होते हैं, तो इंशाल्लाह वो रिलेटिवली आसान रहेगा, क्योंकि ये जो अब एरिया शुरू हो जाता है ना, यहाँ से ये एरिया है यानी याद दहानी का। ठीक है, रिमाइंडर्स का, जो कि हर खास आम के लिए यकसां होते हैं। ठीक है, लेकिन जो गाढ़ी चीज़ें होती हैं मसाइल से रिलेटेड, चाहे वो अकीदे के मसाइल हों, चाहे वो तसव्वुफ़ के मसाइल हों, चाहे वो फ़िक़्ह के मसाइल हों, उनका ताल्लुक जो होता है वो उलमा से होता है। ठीक है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है फिर उलमा के लेवल पर जाके बात करनी होती है, लेकिन अब जो है ना अवामुन्नास की बात शुरू हो रही है। तो आगे फरमाते हैं कि मुनकरीन क़यामत के इस आमियाना शुबे का जवाब है कि मरने के बाद जब इंसान मिट्टी हो गया तो उसकी हड्डियाँ भी रेजा रेजा होकर मुंतशिर हो गईं, और तो उनको दोबारा कैसे जमा करके जिंदा किया जाएगा? तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, बला कादरीना अला अन नुसविया बनाना, ठीक है कि अल्लाह ताला, बल्कि अल्लाह ताला जो है ना वो कुदरत रखते हैं किस बात के ऊपर, नुसविया बनाना, कि हम उनकी बनान को भी, पोरों को भी, ठीक है, यानी जो फिंगर टिप्स के ऊपर जो पोरें होती हैं ना उनको भी बिल्कुल ठीक ठीक कर सकते हैं। तो जिसका हासिल, अब लिखते हैं कि जिसका हासिल ये है कि तुम्हें तो इस पर ताज्जुब है कि मीयत के जर्रात मुंतशरा और बोसीदा हड्डियों को जमा कैसे किया जाएगा और उनमें दोबारा हयात कैसे डाली जाएगी, हालांकि ये बात पहले एक मरतबा मुशाहदे में आ चुकी है कि हर इंसान का वजूद जो दुनिया में पलता और बढ़ता है वो दुनिया भर के मुख्तलिफ मुल्कों, खित्तों के अज्जा और जर्रात का मुरक्कब होता है। तो जिस ज़ात कादिर ने पहली मरतबा सारी दुनिया में बिखरे हुए जर्रात को एक इंसान के वजूद में जमा कर दिया था, अब दोबारा जमा कर लेना उसके लिए क्यों मुश्किल होगा, ठीक है ना। और इस चीज़ का जो मुशाहिदा है मेरे ख्याल में सऊदी अरब में रहने वालों से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना, यानी अमेरिका में रहने वालों को भी इसका मुशाहिदा कम होता है और पाकिस्तान इंडिया में तो थोड़ा और भी कम होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं ना सऊदी अरब में, तो वहाँ पर माशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से चीज़ें आई हुई होती हैं, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली दुआ लगी हुई होती है ना, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो, यानी वो क्या क्या आ रहे हैं, ग्रेप फ्रूट आ रहे हैं, फ्लोरिडा से ग्रेप फ्रूट आ रहे हैं, तो केला जो है वो फिलीपींस से आ रहा है, तो जो कीनू है वो माशाल्लाह पाकिस्तान से आ रहे हैं, और आम जो है वो यमन से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, और मिस्र से भी आ रहे हैं, और सुभान अल्लाह, राइट, एक बंदा जो है ना वहाँ जा करके शॉपिंग करता है पूरी दुनिया की नेमतों को समेट के लेकर के आता है। हमारी सास मरहूमा जब पहली दफ़ा अमेरिका से आई थी, शायद उम्रे पर, पहली दफ़ा तो फिर नहीं आई थी लेकिन वो उम्रे पर आई, तो जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए गई ना, वो जो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है जमजम टावर के अंदर, तो उनकी लिटरली बताया, मुझे बताया लोगों ने कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, ठीक है, कि क्या क्या नेमतें मौजूद थी उधर, ठीक है, यानी उन्होंने अमेरिका में सारी जिंदगी इतना लंबा अरसा गुजारा, उन्होंने ऐसी नेमतें अमेरिका में कभी नहीं देखी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम खाते हैं तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों, खित्तों के अज्जा और ज़रात का मुरक्कब होता है। तो जिस ज़ात कादिर ने पहली मरतबा सारी दुनिया में बिखरे हुए ज़रात को एक इंसान के वजूद में जमा कर दिया था, अब दोबारा जमा कर लेना उसके लिए क्यों मुश्किल होगा? और जिस तरह पहले उसके ढांचे में रूह डालकर जिंदा किया था, दोबारा ऐसा करने में क्या हैरत की बात है, ठीक है। तो हशर अजसाद यानी जिस्मों को, जसदों को खड़ा करना या जमा करना, हशर का जो मैदान है हशर में जिस तरह से किया जाएगा, तो हशर अजसाद में कुदरत हक ताला का अजीब व गरीब अमल, तो गौर इस पर करो कि एक इंसान जिस हैयत व जसामत और शक्ल व सूरत पर पहले पैदा किया गया था, कुदरत हक दोबारा भी उसके वजूद में उन्हीं सारी चीजों को बगैर किसी अदना फर्क के जमा कर देगी, ठीक है। हालांकि अरबों पद्मों, यानी हम तो अरबों तक की खाली काउंटिंग जानते हैं, ये गालबन जो है वो, यानी ट्रिलियंस को जो है वो उर्दू में पद्मों इस्तेमाल किया जाता है, तो अरबों पद्मों इंसान इब्तिदाए दुनिया से कयामत तक पैदा होते और फिना होते रहे, किसकी मजाल है कि इन सब की शक्लों सूरतों और कद व कामत की कैफियतों को अलग अलग याद भी रख सके, उस जैसा दोबारा बनाना तो बड़ा काम है मगर यानी कोई बना नहीं सकता, याद भी नहीं रख सकता कि ये सारी जो डिटेल्स सीन की किधर चली गई, मगर हक ताला ने इस आयत में फरमाया है कि हम सिर्फ इसी पर कादिर नहीं हैं कि मियत के सारे बड़े बड़े अज्जा व आज़ा को दोबारा उसी तरह बना दें, बल्कि इंसानी वजूद की छोटी से छोटी चीज़ को भी हम ठीक उसी तरह कर देंगे जिस तरह वो पहले थी। इसमें बनान यानी उंगलियों के पोरों का खास जिक्र फरमाया कि वो सबसे छोटे अज्जा हैं, जब उन छोटे अज्जा की दोबारा साख में फ़र्क नहीं आया तो बड़े बड़े अज्जा, हाथ पांव वगैरह में तो क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो अब ये छोटे अज्जा तो जो उस ज़माने के इंसानों को ज़ाहरी तौर पे नज़र आते थे वो उंगलियों के पोर ही होते थे, ठीक है, अब जो है वो तो चूंकि यानी सर्जरी वगैरह की वजह से तो अंदर के अज्जा भी जो है वो खुल के इंसानों के सामने आ गए, तो अब उनसे भी ज़्यादा छोटे छोटे अज्जा, सेल्स और यानी सब चीज़ें मौजूद हैं, तो उस वक्त के इंसानों के हिसाब से पोरों ही का जिक्र किया था कि उनके समझ में आ जाए बात। और अगर गौर किया जाए तो शायद अब मैं उसको बनान पढ़ रहा हूँ, पता नहीं हो सकता है उसको बनान पढ़ते हैं या हम श्योर नहीं हूँ, شاید بنان یعنی انگلیوں کے پوروں کی تخصیص میں اس کی طرف بھی اشارہ ہو کہ حق تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے سارے ہی بدن میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے، خصوصاً انسانی چہرہ جو چند انچ مربع سے زائد نہیں ہوتا، اسکوائر فٹ یعنی اسکوائر مربع چند انچ، تو اس کے اندر قدرت حق نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں پدموں انسانوں میں ایک کا چہرہ بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایون آئیڈینٹیکل ٹوئنس، وہ بھی جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن ان کی اماں کو تو سمجھ میں آ جاتا ہے، ابا بھی پہچان لیتے ہیں اور بھائی بہن بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہیں، لیکن ان میں کیا فرق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے فرق نا ایون آئیڈینٹیکل ٹوئنس کے اندر بھی، تو انسان کی زبان اور حلقوم وغیرہ بالکل یعنی بالکل ایک ہی طرح ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے ایسی ممتاز ہے کہ بچے بوڑھے مرد عورت کی آوازیں الگ الگ پہچانی جاتی ہیں اور ہر انسان کی آواز الگ الگ پہچانی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچوں کی آواز کا بالکل ہی ڈفرینٹ پچ ہوتا ہے بوڑھوں کی آواز کا، یعنی آپ کسی کو نہیں جانتے ہیں لیکن آواز سن کر کے اتنا تو پتہ چل جاتا ہے نا فوراً کہ یہ بچہ ہے، کون سا بچہ ہے یہ نہیں پتہ لگتا جب تک آپ اس کو پہچانتے نہ ہو، لیکن بچہ ہے کسی کو سن کے آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، یہ بوڑھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد ہر انسان کی اپنی ایک پچ ہوتی ہے جس کو سن کر کے اس کے جاننے والے پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو یہ بندہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز انسان کے انگوٹھے اور انگلیوں کے پوروے ہیں کہ ان کے اوپر جو نقش و نگار خطوط کے جال کی صورت میں قدرت نے بنائے ہیں وہ کبھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے، صرف آدھ انچ کی جگہ میں ایسے امتیازات، یعنی وہی اگین جو ٹریول کرتے ہیں خصوصاً سعودی عرب والے تو بہت زیادہ فنگر پرنٹنگ یہاں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پانچوں انگلیوں کی بھی لیتے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کی بھی لیتے ہیں، تو ہمارا تو ہر وقت کا یہ مشاہدہ ہے نا کہ اتنی چھوٹی سی ایریا ہوتی ہے ہمارے انگلیوں کے اوپر اور اس کی بیسس پر وہ بندوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہ میچ کر جاتے ہیں۔ جب فنگر پرنٹ کے اوپر ایک انگلی رکھواتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ کا ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے ڈیٹا بیس میں اس کو میچ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو میچ مل بھی جاتا ہے۔ کتنے ہزاروں لوگ ہوتے ہوں گے، لاکھوں لوگ ہوتے ہوں گے جن کا ڈیٹا منسٹری آف انٹیریئر کی ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہے اور وہاں پہ ایک بندے نے انگلی رکھی اور وہ ادھر سے جا کر کے کمپیوٹر جو ہے نا وہ میچ کر کے لے آتا ہے، یعنی مختلف ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جی ان کی ان صاحب کی انگلی جو ہے نا اس کے جو ہے نا وہ 100 بندوں کے ساتھ یہ انگلی میچ کر رہی ہے، تو اب تو مشکل ہو جائے گی ان صاحب کو، یہ تو اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ان کی انگلی میچ کر رہی ہے تو اب تو پھر وہ آپ کو کھڑا کر دیں گے سائیڈ میں کہ جی آپ کا تو ابھی اور تحقیق کرنی پڑے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہ اسی انگلی سے جا کر کے میچ کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رائٹ؟ تو یعنی انگلیوں کے پورے ہیں کہ ان کے اوپر جو نقش و نگار خطوط کے جال کی صورت میں قدرت نے بنائے ہیں وہ کبھی ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے، صرف آدھ انچ کی جگہ میں ایسے امتیازات کہ اربوں انسانوں میں یہ پوروے مشترک ہونے کے باوجود ایک کے خطوط دوسرے سے نہیں ملتے، ٹھیک ہے؟ یہ جو انہوں نے ریٹنا سکین نکالا ہے نا، آنکھوں کے ریٹنا کو جو سکین کرتے ہیں دبئی ایئرپورٹ کے اوپر یا شاید کچھ اور جگہوں پر کرتے ہوں گے، تو اس کی مین ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں یہ کچھ وجہ سے کبھی مسخ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا بوڑھا انسان جب زیادہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے یہ نا پھر گھس جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ آسانی سے نہیں ہو پاتی ہے۔ کچھ لوگ باقاعدہ اس کو نا کسی ٹیکنیک سے باقاعدہ مینیپولیٹ بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چینج کرتے ہیں اپنی فنگر پرنٹنگ کو، تو اس کو یعنی اس فراڈ سے بچنے کے لیے ریٹنا سکین شروع کیا گیا، کیونکہ اپنے ریٹنا کی جو پرنٹ ہے اس کو مسخ کرنا یا اس کا مسخ ہو جانا، خراب ہو جانا، یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ریٹنا بھی ایک آئیڈینٹیفیکیشن رکھی ہے جو آنکھ کے اندر جو لینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا مختلف بنایا ہر انسان کے درمیان کہ اس کو بھی ایک آئیڈینٹیفیکیشن کا سورس استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال قدیم و جدید ہر زمانے میں نشان انگوٹھا کو ایک امتیازی چیز قرار دے کر عدالتی فیصلے اس پر ہوتے ہیں، اور فنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگوٹھے ہی میں نہیں، ہر انگلی کے پوروے کے خطوط بھی اسی طرح ممتاز ہوتے ہیں۔ تو پہلے صرف انگوٹھا چھاپ ہوتے تھے، اب تو ساری انگلیاں چھپواتے ہیں نا تاکہ اور زیادہ کیئرفل ہو جائیں۔ اچھا، تو آگے کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لینے کے بعد پوروں کے بیان کی تخصیص خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. اب مطلب یہ ہے کہ تمہیں تو اسی پر تعجب ہے کہ یہ انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو گیا. ذرا اس سے آگے سوچو اور غور کرو کہ صرف زندہ ہی نہیں ہو گیا بلکہ اپنی سابقہ شکل و صورت اور اس کے ہر امتیازی وصف کے ساتھ زندہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, خالی روح کو زندہ نہیں کر دیا ہے بلکہ قیامت کے دن جسم بھی یہ والا ملے گا جو کہ اس دنیا کے اندر ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو جنت میں جانے کے بعد پتہ نہیں, یا تو یعنی جنت میں جانے کے بعد وہ جسم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا. کوئی اس کا ایک بیچ میں ایک ایسا ٹرانزیشن پوائنٹ آئے گا کہ جسم مختلف بن جائے گا. ٹھیک ہے, یا یہ کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میدان حشر میں جو زندہ کیا جائے گا تو اسی وقت جو ہے وہ جسم تو یہی وہی ہوگا, اسی دنیا والا ہوگا, لیکن اس کا جو سائز ہے نا وہ مختلف ہوگا. ٹھیک ہے, تو جو تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے اس دنیا کے اندر تو ان کے جسم کا سائز بہت چھوٹا ہو جائے گا, چونٹیوں جیسا سائز ہو جائے گا ان کا. ٹھیک ہے نا, لیکن جسم وہی ہوگا لیکن سائز چونٹیوں والا, اور جو باقی لوگ ہوں گے ان کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوگا, کسی کا اور بڑا ہوگا, کسی کا اور بڑا ہوگا وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اور جہنم میں بھی پتہ ہی ہے نا کہ وہ اس سائز میں ہم نہیں جائیں گے, اللہ نہ کرے کہ کوئی جائے, لیکن اس سائز میں انسان نہیں جائیں گے بلکہ ان کا جسم اتنا بڑا ہوگا کہ جہنم کے عذاب کو سہ بھی سکے. تو بہرحال لیکن یہی جسم ہوگا, یہی شکل ہوگی. ٹھیک ہے, سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پہچان بھی لیں گے. اچھا, تو یہاں تک کہ انگوٹھے اور انگلیوں کے پوروں کی خطوط پہلی پیدائش میں جس طرح تھے, اس نشاط ثانیہ یعنی اس دوسری حیات میں بھی بالکل ویسے ہی ہوں گے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, برکتوں والا ہے اللہ, بہترین تخلیق کرنے والا. تو بات بس یہی ہے کہ سوچنا اور غور کرنا. ٹھیک ہے, تو جو ان معاملات میں سوچتا ہے اور غور کرتا ہے تو اس کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ کی حقیقت کھلتی ہے, بڑائی سامنے آتی ہے, اور اس کو پھر فکر ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. لیکن جو ان معاملات میں سوچنے کے بجائے کسی اور معاملے کے اندر سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کو اس نے اگنور کیا ہوا ہوتا ہے, تو یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے, موجود ہوتا ہے, لیکن پھر بھی گویا کہ اوجھل ہوتا ہے اس کی نگاہ سے, اس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کچھ بھی. ٹھیک ہے, تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ آپ کے فوکس کا ہے, آپ کے توجہ کا ہے کہ کس طرف آپ توجہ دے رہے ہیں. اسی وجہ سے جو یعنی دنیا کے اندر جو دجالی نظام ہے, جو یعنی انتہائی غفلت کا جو نظام ہے نا, تو اس غفلت کے نظام کے لیے لازمی ہے کہ یہ سوشل میڈیا چلتا رہے, فیس بک چلتا رہے, واٹس ایپ کے گروپس جو ہیں, ٹھیک ہے نا, مختلف قسم کے گروپس چلتے رہیں, ٹویٹر چلتا رہے, اور سیٹلائٹ چینلز چلتے رہیں, رائٹ, یہ ساری چیزیں چلتے رہیں. ٹھیک ہے نا, اگر یہ چیزیں چلنا بند ہو جائیں گی نا تو پھر انسانوں کو اس طرف مائل کرنے کے جو غفلت کی طرف مائل کرنے والے جو اسباب ہیں, یہ اسباب ایک دم سے غائب ہو جائیں گے. تو اب جو ہے نا وہ پاسبلٹی بڑھ جائے گی کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن میں غور کرنا شروع کر دیں گے, رائٹ, مولویوں کی بات ذرا غور سے سننا شروع کر دیں گے, آخرت کے بارے میں ان کو فکر ہو جائے گی, اپنے مرنے کی فکر ہو جائے گی, رائٹ. تو اس وجہ سے لازمی ہے کہ جتنا ہی کرونا وائرس پھیل جائے دنیا کے اندر, میڈیا بند نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, سب کچھ بند ہو سکتا ہے, میڈیا بند نہیں ہو سکتا, کیونکہ میڈیا بند ہو جائے گا نا تو پھر یہ سارے سوچنا کہیں گے شروع کر دیں. ٹھیک ہے, تو کیا لکھتے ہیں آپ کہ if someone was blind or handicapped will he be born blind or handicapped again or if someone died as a kid will he be born as an adult. نہیں, کڈ کا تو وسوخ کے ساتھ آپ کو جواب یہ عارض دے سکتا ہے کہ نہیں, کڈ تو کڈ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, اور وہ کڈ ہی کی حالت میں پھر جنت میں جائے گا. صحیح ہے, اور یہ جو بلائنڈ اور ہینڈی کیپ کا جو معاملہ ہے تو اس میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے جنت میں تو اس کے کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہوگا, چاہے آنکھ کا ہینڈی کیپ ہو, کوئی بھی جنت کے اندر اس قسم کے ہینڈی کیپس نہیں ہوں گے. میدان حشر کے اندر یہ ہینڈی کیپ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا مجھے کوئی تفصیل یاد نہیں آ رہی, اگر آپ سے بھی کسی کو پتا ہو تو بتا سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی خاص حدیث ہے کہ اندھا تھا تو وہاں پہ جا کر کے اس کو آنکھیں, یعنی میدان حشر ہی میں اس کو آنکھیں مل جائیں گی یا نہیں, اس وقت میرے ذہن میں کوئی نقلی دلیل جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اچھا, باقی اتنا تو یعنی دوسری سائڈ پہ پتہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں یعنی بلائنڈ نہیں تھے لیکن کفر کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ کے احکامات سے کفر کیا, تو وہ اندھے کھڑے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے نا وہ یعنی کوئی ایسا پوائنٹ ان ٹائم آئے گا میدان حشر کے اندر کہ وہ اپنی جو 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 آئی سائٹ ان کے پاس اویلیبل تھی نا اس آئی سائٹ کو بھی لوز کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا, شروع میں لوز نہیں کریں گے کیونکہ ان کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ان کی کیا ہو رہا ہے اور وہ یعنی فرشتوں کو ترتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے اور ہیبت ان کے اوپر طاری ہوگی, جہنم کی جو ہے وہ جو شعلے میدان حشر کے اوپر آ کے گر رہے ہوں گے وہ ان سب کو نظر آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایسا پوائنٹ آئے گا یا تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے حساب کے لیے, تو اس وقت جو ہے نا ان کو اندھا کر دیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے. رائٹ, تو وہ چیز تو نص سے ثابت ہے کہ بینا لوگوں کو اندھا کر دیا جائے گا, لیکن اندھے لوگوں کو بینا کیا جائے گا یہ کس پوائنٹ ان ٹائم پر ہوگا یہ میرے ذہن نہیں آ رہا. معذرت کے ساتھ, اچھا آگے چلتے ہیں, تھوڑا ٹائم بھی ہے. لیفجر امامہ, اس کی تفسیر, اچھا ایک منٹ, جو ترجمہ اور فلاح سے تفسیر ہے وہ بھی تو ہم نے پوری نہیں پڑھی ہے نا, تو اس وجہ سے ہم ذرا بیک پہ آتے ہیں ترجمے اور خلاصہ تفسیر کے اوپر, پھر اس کے بعد جب یہ لیف جرا امامہ آئے گا تو پھر وہ واپس آ جائیں گے اس کے اوپر. تو آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان لن نجمع عظامہ, کہ کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ نہ جمع کریں گے ہم اس کی ہڈیاں, ہم جمع کریں گے ہڈیاں عظام, یہ پڑھ چکے تھے ایکچولی ہم, بلا قادرین انا ان نسوی بنانا, بلکہ مفہوم بنے گا کہ کیوں نہیں, قادرین قدرت رکھتے ہیں ہم اس بات پر کہ اللہ ان نسوی بنانا, کہ ہم ان کی یعنی بنانوں کو جو ہے, اچھا ہاں جو لفظ تھا بنان, ہاں وہ بنانی ہے کیونکہ آیت کے اندر بھی بنانی ہے, آف کورس بنان نہیں پڑھیں گے بلکہ بنان پڑھیں گے, تو ان کی بنان کو جو ہے نا ہم بالکل ٹھیک ٹھیک بنا دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, پانچویں آیت کا ترجمہ بنتا ہے کہ بلکہ انسان چاہتا ہے, انسان ارادہ کرتا ہے, ارادہ یرید ارادتن, کہ لیفجر امامہ, کہ ڈھٹائی کرے اس کے سامنے. ٹھیک ہے, یعنی فجر یفجر ڈھٹائی کرے, اس کی ڈھٹائی سے ترجمہ کیا, خلاصہ تفسیر میں اس کے تحت کیا لکھتے ہیں کہ یہ ایسا بازا آدمی, بل یرید الانسان, کہ ایسا بازا آدمی قیامت کا منکر ہو کر, یعنی بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کا منکر ہو کر یوں چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ زندگی میں بھی بے خوف و خطر ہو کر فسق و فجور کرتا رہے. یعنی ڈھٹائی کو تفسیر میں کیا لکھا کہ بے خوف و خطر ہو کر کہ ڈھٹائی کے ساتھ فسق و فجور کرتا رہے, اس لیے بطور انکار کے وہ پوچھتا ہے یسأل أیان یوم القیامة, وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کے دن کب آئے, کب آئے گا. تو یہ جو پوچھ رہا ہے یہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھ رہا بلکہ استہزاء اور انکار کے طور پر پوچھ رہا ہے کہ قیامت کے دن کب آئے گا. یعنی چونکہ اپنی تمام عمر معاصی و شہوات میں گزارنا طے کر چکا ہے, اس لیے اس کو طلب حق کی نوبت ہی نہیں آتی کہ وہ پوچھے بھائی کہ بھائی کب قیامت آئے گی اور میں ذرا اس کی تیاری کر لوں, اس نوبت ہی نہیں آتی کہ قیامت کا ہونا اس کو ثابت ہو, اس لیے انکار پر مصر ہے. ٹھیک ہے, اور انکارن پوچھتا ہے کہ کب آئی ہے, جیسے کسی کا مذاق اڑانے کے لیے ہم پوچھتے ہیں کہ اور بھائی کیا خیال ہے کب تمہاری وہ آنے والی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں, اس کو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے. سو پھر کیا ہوگا, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, کہ جب آنکھیں چندھیانے لگیں گی, برق جو ہے وہ روش, وہ بجلی کی کڑک یا بجلی کو کہتے ہیں, تو بجلی جب آنکھوں کے اوپر پڑتی ہے تو آنکھوں کا کیا حشر ہوتا ہے, چندیا جاتی ہیں. تو اس وجہ سے اس کا ترجمہ ایسے ہی کیا کہ سو جس وقت مارے حیرت کے آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی, اور وجہ اس حیرت کی یہ ہوگی کہ جن امور کی تکذیب کرتا تھا وہ دفعتاً نظر آ جائیں گی. قذاف جلالین, شریف میں اس کی تفصیل لکھی, یعنی کہ ابھی ان کی آنکھیں چل رہی ہوں گی, کام کر رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, تو وہ فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے میدان حشر میں, دوبارہ سے اٹھ کر کے جو کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اس کو نظر آ رہی ہوں گی. اور کیا ہوگا, اور وخصف القمر, اور چاند بے نور ہو جائے گا. गह जाएगा चांद, या चांद को जो है वो गिरन लग जाएगी या गह जाएगा, बेनूर हो जाएगा। अच्छा, और चांद की क्या तफसीस है, बल्कि वो जुमिया और शम्स वल कमर, के शम्स और कमर दोनों जमा कर दिए जाएंगे, एक ही हालत के हो जाएंगे, यानी दोनों ही बेनूर हो जाएंगे। जैसा हदीस बुखारी में आता है कि तकुरान 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 वो मानी का वरत, कहा इब्न अब्बास अजलमत रवाहुमा फिद दुर्र मंसूस तकवीर। सूरह तकवीर की जो 30वें पारे में है उसकी तफसीर में उन्होंने लिखा है कि ये दोनों के दोनों जो है ना वो पूरे हो जाएंगे, बेनूर हो जाएंगे। अच्छा, और लिखते हैं कि चांद को जुदा बयान करना शायद इसलिए हो कि अरब को बवजह कमरी हिसाब रखने के उसका हाल देखने का ज़्यादा एहतमाम था, ठीक है, क्योंकि उस ज़माने में जो ग्रेगोरियन और सोलर कैलेंडर था वो स्टार्ट नहीं हुआ था, इवन नॉन मुस्लिम्स भी जो है वो कमरी कैलेंडर ही फॉलो करते थे, तो उनको कमर के अहवाल का ज़्यादा पता होता था, ज़्यादा फिक्र रहती थी। अल्लाह ताला ने कमर का अलग से जिक्र कर दिया, वह खसफ और कमर, और फिर दोनों का एक साथ भी जिक्र कर दिया, दुनिया शम्स और कमर। अच्छा, और क्या कहते हैं कि उस रोज़ इंसान कहेगा कि अब किधर भागूं, इशाद होता है कि हरगिज़ भागना मुमकिन नहीं है। तो यकूलुल इंसानु, यानी इंसान कहेगा, यौमा इज़न उस दिन, अइनल मफर, मफर यानी फरार की जगह, इस्म ज़र्फ़ है ना, तो फरार की जगह किधर है, कहाँ भागूं मैं, कल्ला ला वज़र, तो भाग क्यों नहीं सकेगा, एक तो ये कि भागने की जगह ही यानी इतनी गुंजाइश ही नहीं होगी कि वो भागे, क्योंकि हर कोई जो है वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ खड़ा होगा कि हिलने की जगह नहीं होगी, ठीक है, तो फिर भागेगा कैसे, इतने क्राउड के अंदर तो कोई भाग भी नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि जो किनारे होंगे मैदान हशर के, तो किनारों से बाहर क्या चीज़ होगी, वो जहन्नुम होगी, ठीक है, मैदान हशर के साथ जो एडजेसेंट जगह है ना वो है जहन्नुम, और जहन्नुम के परले यानी उसके दूसरी तरफ क्या चीज है, जन्नत है, ठीक है, तो अब ये भागेगा तो कहाँ जाएगा, जहन्नुम ही गिरेगा, तो भाग ही नहीं सकेगा, पहली बात ये है, और भागने की कोई इसको जगह ही नहीं रहेगी काफिर के लिए, और जन्नत में जाने का तो एक ही रास्ता है, खुले सरात वाला रास्ता, ठीक है, और उसके ऊपर तो फिर पैरा बैठा हुआ होगा। तो ये इंसान कहेगा कि भागने की जगह कहाँ है, कल्ला ला वजर, कोई नहीं है, कहीं नहीं है। तो भागना हरगिज मुमकिन नहीं होगा क्योंकि पनाह की जगह कोई नहीं होगी, उस दिन सिर्फ आप ही के रब के पास ठिकाना जाने का है, फिर ख्वाह जन्नत में भेजें या दोजख में, और रब के सामने जाने के वक्त उस रोज इंसान को उसका सब अगला पिछला किया हुआ जतला दिया जाएगा। इला रब्बिका यौमा इज़िन अल मुस्तकर, ठीक है, यानी उस दिन तेरे रब की तरफ ही मुस्तकर होगा, मुस्तकर ठिकाने की जगह को कहते हैं, बेस स्टेशन, ठीक है, ये होता है ना, ये एयरबेस मिलिट्री बेस, तो उसको अगर क्लासिकल उर्दू में ट्रांसलेट करें तो मुस्तकर का लफ्ज इस्तेमाल होता है, फजाई मुस्तकर एयरबेस, ठीक है। युनब्बउल इंसानु यौम इज़िन बिमा कद्दम व अख्खर, कि इंसान को जतला देंगे यानी खोल करके बयान कर देंगे, नब्बा युनब्बउ, ठीक है, उस दिन भाई यौम इज़िन यौम इज़िन यौम इज़िन बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये सूरह क़यामा है, ठीक है, तो क़यामत के को बार बार यौम इज़िन से याद दिला रहे हैं, ठीक है, उस दिन क़यामत के दिन, उस दिन उस दिन, बिमा कद्दमा व अखरा, जो उसने कद्दमा यानी आगे भेजा है, वह अखरा यानी पीछे छोड़ा है, इसकी तफसीर इंशाल्लाह आगे आएगी। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक हम तर्जुमा रोक करके फिर, और जो खुलासे तफसीर है वो भी यहाँ तक रोक करके फिर बाकी के बात को मसाइल से देख लेते हैं कि क्या होगा, कि उस रोज़ इंसान को उसका सब अगला पिछला किया हुआ जतला दिया जाएगा, और इंसान का अपने आमाल से आगाह होना कुछ इस जतलाने पर मौकूफ़ नहीं होगा, बल्कि इंसान खुद अपनी हालत पर बवजाय इंकिशाफ ज़रूरी के खुद खूब मुत्तला होगा। ये तो खैर आगे आ गया, उसकी आयत आगे आएगी, तो यहाँ तक जो है वो हम खुलासे तफसीर को रोक करके थोड़ा सा मालूम मसाइल से देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हम ये बारे में बात चल रही है, चंद मिनट आपसे एक्स्ट्रा लेकर के, कि लियफ जोरा अमामा के बारे में लिखते हैं कि लफ्ज अमाम बिफतहिल हमजा, ठीक है, अमामा पढ़ेंगे इसको, और मुस्तकबिल के मानी में है। वो जो पगड़ी बांधते हैं ना उसको इमामा कहते हैं, ठीक है, तो अमामा का मतलब होता है सामने वाली चीज़। इसलिए मानी आयत के ये हुए कि काफिर और गाफिर इंसान अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के इन मुशाहदात में गौर नहीं करता कि माजी के इनकार पर नादिम होकर अपने मुस्तकबिल को दुरुस्त कर ले, बल्कि मुस्तकबिल में भी वो यही चाहता रहता है कि अपने कुफ्र और शिर्क और इनकार और तकज़ीब पर जमा रहे। उसकी नीयत यही होती है ना कि वो हमेशा कुफ्र करता रहे, उसकी ये नीयत नहीं होती कि मैं 6 महीने कुफ्र करूँगा और उसके बाद मैं मुसलमान हो जाऊँगा, बल्कि हमेशा हमेशा कुफरी की नीयत होती है। इसी वजह से जहन्नुम के अंदर भी उसको हमेशा हमेशा का अजाब होगा, और ईमान वाले की भी यही नीयत होती है कि उसने हमेशा ही ईमान की हालत में रहना है। इसी वजह से अगर के मुख्तसर ज़िंदगी में वो अमाल करता है और ईमान की हालत में मुख्तसर ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन उसके बदले में उसको हमेशा हमेशा की जन्नत मिलती है, क्योंकि उसकी नीयत हमेशा हमेशा ये ईमान की थी। ठीक है, आगे चले। फ़ैज़ा बरक अल बसर व खसफ अल कमर व जुमी अल शम्स व अल कमर, कि ये क़यामत के हालात का बयान है। बरका बेफतह अल बा व कसर रा, ठीक है, यानी बरका पढ़ेंगे इसको, कि मानी आँख खीरा हो गई कि देख ना सकी, क़यामत के रोज़ सबकी निगाहें खीरा हो जाएंगी, निगाहें जमा कर किसी चीज़ को ना देख सकेंगे। ठीक है, तो अच्छा एक बात यहाँ पे ज़हन में आई कि ये जो क़यामत की तफसीलात है ना, तो ये यानी बड़ी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, डिस्पर्स तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने और कुरान मजीद ने ये जो सारी हमें चीज़ें बताई हैं ना, इवन साइंस ऑफ द एंड ऑफ टाइम, ठीक है ना, ये जो इमाम मेहदी के आने का वक्त है और दज्जाल के आने का वक्त है, जो अलामात क़यामत के ज़ुहूर, ये सारी चीज़ें, और फिर मैदान हशर के अंदर जो वाक़यात हैं, ये सब जो बताई गई हैं इनमें तफसील तो बेशक बहुत ज़्यादा है। पिछली किसी उम्मत को इतनी तफसील बताई ही नहीं गई किसी भी चीज़ के बारे में, ये यानी है। अच्छा एक चीज़ के बारे में बहुत तफसील बताई गई पिछली उम्मतों को, वो क्या चीज़ थी कोई बताएगा? एक चीज़ के बारे में पिछली उम्मतों को बहुत तफसील बताई गई, ठीक है, लेकिन इस उम्मत को उस चीज़ की तफसील नहीं बताई गई, बल्कि इस उम्मत को जो है वो क़ुर्ब क़यामत की तफसील बताई गई और क़यामत के दिन की तफसील बताई गई। तो वो कौन सी चीज़ थी जिसकी तफसील पिछली उम्मतों को बताई गई और उन उम्मतों को क़ुर्ब क़यामत और क़यामत के दिन की तफसील नहीं बताई गई? वो कौन सी चीज़ थी जो उनको बताई गई? आखिरी नबी के बारे, माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब दिया सबने, आखिरी नबी के बारे, नबी अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील जो है वो पिछली उम्मतों को बताई गई। हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे सामने तो अल्हम्दुलिल्लाह राइट सहाबा कराम के सामने तो मौजूद थे, और फिर सहाबा कराम ने जो है वो उन्होंने बता दिया। नबी को और कुरान को वो तफसीलात बताने की ज़रूरत नहीं थी, बस उनकी तारीफ के अंदर बातें मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन क़यामत और क़ुर्ब क़यामत की तफसीलात जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने और कुरान ने हमें बताई हैं, लेकिन इनमें तरतीब जो है ना, ये तरतीब काफ़ी वेग है, ठीक है, कि कौन सा वाकया कब हो रहा है और उसके बाद कौन सा हो रहा है और उसके बाद कौन सा हो रहा है, तो ये तरतीब ये क्लियर नहीं है। हाँ, उलमा ने बहुत सारी चीज़ों को जोड़ करके एहतमाली दर्जे में कुछ तरतीब बना करके बताई है, लेकिन वो एहतमाली दर्जे में, ठीक है, तो इस वजह से ना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करें कि जी कोविड आ गया है तो अब जो है वो क़यामत आ जाएगी, या फिर अब जो है वो दज्जाल ने आने ही आना है, या इमाम मेहदी ने आने ही आना है, क्योंकि अब जो है वो वायरस आ चुका है और वायरस के बारे में जो है वो यानी सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस मौजूद थी, ठीक है ना भाई, ठीक है, हदीसें मौजूद हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन तरतीब फिर भी जो है ना वो यानी एम्बिगुअस है, ठीक है, अनक्लियर है। तो बहरहाल यहाँ पर भी जो है ना कि भाई ये निगाहें खीरा हो जाएंगी, तो अब ये निगाहें किस पॉइंट पे, इसलिए कि शुरू में तो क्या होगा, बाकी आयात से पता लगता है कि जी आसमान फटेगा और बादलों के अंदर जो है ना वो फरिश्ते उतर रहे होंगे, फिर अल्लाह ताला का अर्श उतरेगा और सारे लोग जो है मैदान हशर में ऊपर की तरफ टिकटिकी बांध कर देख रहे होंगे, है ना, और इतना टिकटिकी बांध के देख रहे होंगे कि बराबर में जो लोग खड़े हुए हैं वो बेलिबास हालत में होंगे, लेकिन कोई उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा होगा, है ना, अजीब कैफियत होगी। तो टिकटिकी बांध के इतना देख रहे होंगे और यहाँ पर क्या है कि वो किसी चीज़ को देख ही नहीं सकेंगे, ठीक है ना, तो अब ये तफसील ये फिर तरतीब की डिटेल्स हैं तो ये हमें ज़्यादा वसूस नहीं पता। खैर ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के ख़त्म करते हैं कि खसवुल कमर खुसूब से मुश्तक है जिसके मानी रोशनी खत्म होकर तारीकी हो जाने के हैं, मानी ये है कि चांद बेनूर हो जाएगा। अब ये चांद बेनूर होने वाला मसला भी जो है ये भी यानी नफ़खे उला से के वक्त का ये सारा मामला है ना, जब चांद और सूरज और सब ठीक है, फिर तो यानी जब मैदान हशर कायम होगा तो उसके अंदर तो चांद सूरज वगैरह का वो, हाँ सूरज जो है वो इतना करीब आ जाएगा कि सवा निज़े के ऊपर होगा और उसका फिर, तो ये भी जरा तरतीब थोड़ी सी एम्बिगुअस है इसके अंदर की कौन सी चीज़ किस तरह से कैसे होगी। आगे वजूम अशम्स वल कमर में ये बतलाया है कि सिर्फ चांद ही बेनूर नहीं होगा बल्कि आफ्ताब भी बेनूर हो जाएगा, जिसके मुताबिक दुनिया के फलासफा का यह कहना है कि असल रोशनी तो आफ्ताब में ही है। ठीक है, यानी साइंटिस्ट और फिलोसोफर जो हैं वो गोया के एक ही टाइप के लोग होते हैं, तो उन्होंने बताया कि सूरज में ही रोशनी होती है, चांद की रोशनी भी आफ्ताब की शुआओं से मुस्तफाद ही होती है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है सूरज की रोशनी को। अब तआला ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ ये चांद और सूरज दोनों एक ही हाल में जमा कर दिए जाएंगे, ये दोनों ही बेनूर होंगे। और बात आज़ाद फरमाया कि चांद सूरज की जमा होने का मतलब ये है कि उस रोज़ चांद और सूरज दोनों एक ही मतलब से यानी एक ही साइड से एक ही तरफ से तुलू होंगे, जैसा कि बाज़ रवायात में आया है वल्लाहु आलम। इंशाल्लाह बाकी तफ़सील अगली क्लास में पढ़ लेंगे। किसी ने एक प्राइवेट की एक चीज़ लिखी है, बस वो पढ़ लेता हूँ कि क्या सवाल का इन शॉर्ट जवाब ये हुआ कि कामिल सुपुर्दगी वाले को मायूसी नहीं होगी। जी यानी जिसका ताल्लुक जो है वो शेख से होगा तो और सही नियत के साथ होगा, ठीक है ना, यानी इसके अंदर भी तो थोड़ी शर्तें होती है ना कि भाई आप शेख से किस नियत के साथ ताल्लुक रखे हुए, ठीक है ना, और फिर जो है वो शेख साहब की कुछ बात भी मान रहे हैं या बस ऐसे ही उनको साइड पर रखा हुआ है ना, तो जो इन शराइत को भी पूरा कर रहा होगा और उसका शेख के साथ ताल्लुक होगा तो वो फिर शैतान की तरफ से जो मायूसी डालने वाले अमल होते हैं उनसे वो महफूज रहेगा। ठीक है जी, शॉर्ट जवाब यही हुआ इसका। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।